योएल की पुस्तक और लाओदी की आय सातवें दिन एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 11
नंबर 11 अंतिम वर्षा का संदेश अनुग्रह काल के निकट आते समापन की चेतावनी है और इसके साथ व्यक्तिगत तैयारी के आह्वान का संगम है। ये दोनों अवधारणाएं यशाया के दर्शन के अध्याय 10 और 11 में प्रस्तुत की गई हैं और इन्हें दानियेल 11 के उस संदेश के संदर्भ में रखा गया है जिसकी मुहर 1989 में खोली गई थी तथा जिसका छिपा हुआ इतिहास 144,000 की मुहरबंदी के समय खोला जाता है, जिनका दर्शन में प्रतिनिधित्व यशाया और इसके पुत्रों द्वारा किया गया है। ये दोनों रेखाएं मिलकर आहाज के लिए एक चेतावनी को दर्शाती है। आहाज उन लाओदिकियाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें बाइबिलीय भविष्यवाणी में व्याप्त इन दो आंतरिक और बाहरी रेखाओं की कोई समझ नहीं है। दानियेल एक अबर और प्रकाशित वाक्य एक अबर एक ही आंतरिक और बाह्य निरूपण प्रस्तुत करते हैं, जहां दानियेल बाह्य का और प्रकाशित वाक्य आंतरिक का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों आंतरिक और बाह्य अध्याय और पद अध्याय 10 और 11 के बाह्य और आंतरिक संदेशों से सीधे जुड़ते हैं और वे ऐसा यशाया 11:1 में करते हैं। यशाया का 6 अध्याय 9 गिरावर है और ये 9 गिरा पर संदेशवाहक के रूप में यशाया के शुद्धिकरण और अभिषेक को पहचानता है। 7वें अध्याय से आगे 9 गिरा पर आए संदेश की रूपरेखा है। 10वां अध्याय दानियेल के 11वें अध्याय के अंतिम 6 पदों की भूमिका की पहचान करता है, क्योंकि वही वो संदेश था जिसकी मुहर 2889 में अंत के समय खोली गई थी। यशाया का 11वां अध्याय 9-11 और यशाया बा तथा उसके संदेश के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है। पहली आयत जेसी के माध्यम से 10वीं आयत से जुड़ी है और 10वीं आयत कहती है और उस दिन, और 11वीं आयत आगे कहती है और ऐसा होगा कि उस दिन प्रभु अपने लोगों के शेष बचे हुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फिर दूसरी बार बढ़ाएगा। वह दिन 1850 था।
और यीशाय के ठूंठ से एक कोंपल फूट निकलेगी और उसकी जड़ों से डाली उगेगी और उसके ऊपर प्रभु की आत्मा ठहरेगी, बुद्धि और समझ की आत्मा, सम्मति और सामर्थ्य की आत्मा, ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा। और वो प्रभु के भय में तीव्र समझ वाला होगा। वो ना अपनी आंखों के देखे के अनुसार न्याय करेगा, ना अपने कानों के सुने के अनुसार ताड़ना देगा, परंतु वो धर्म से दीनों का न्याय करेगा और पृथ्वी के नम्र जनों की ओर से न्याय के साथ ताड़ना करेगा। वो अपने मुंह की छड़ी से पृथ्वी को मारेगा और अपने होंठों की श्वास से दुष्ट को मार डालेगा। धर्म उसकी कटी का कमर बंद होगा और विश्वास योग्यता उसके कटी प्रदेश का कमरबंद। भेड़िया भी मेमने के साथ रहेगा और तेंदुआ बकरी के बच्चे के साथ लेटेगा और बछड़ा जवान सिंह और पाला पोसा पशु साथ साथ रहेंगे और एक छोटा बच्चा उन्हें ले चलेगा। गाय और भालू साथ चरेंगे, उनके बच्चे साथ साथ लेटेंगे और सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूध मुहा बच्चा सांप के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ बच्चा नाग की मांद पर अपना हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर वे न तो हानि पहुंचाएंगे और न विनाश करेंगे, क्योंकि जैसे जल समुद्र को ढांप लेते हैं वैसे ही पृथ्वी प्रभु के ज्ञान से परिपूर्ण होगी।
11-10 और उस दिन यशाया का मूल होगा जो जातियों के लिए ध्वज के समान खड़ा रहेगा, उसे अन्य जातियां खोजेंगी और उसका विश्राम महिमामय होगा।
और उस दिन ऐसा होगा कि प्रभु फिर दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों के उन बचे हुए को जो बचे रहेंगे अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से वापस ले आएगा।
11-12
और वो जातियों के लिए एक ध्वज खड़ा करेगा और इज़राइल के निकाले हुए लोगों को इकट्ठा करेगा और पृथ्वी के चारों कोनों से यहूदा के तितर बितर लोगों को इकट्ठा करेगा।
एप्रैम की ईर्ष्या भी दूर हो जाएगी और यहूदा के विरोधी नाश हो जाएंगे। एप्रैम यहूदा से ईर्ष्या नहीं करेगा और यहूदा एप्रैम को सताएगा नहीं, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधों पर झपटेंगे। वे एक साथ पूर्व वालों को लूटेंगे, वे एदोम और मोआब पर अपना हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोन के पुत्र उनकी आज्ञा मानेंगे।
और प्रभु मिस्र के समुद्र की जिह्वा को सर्वथा नष्ट कर देगा
और अपनी प्रबल वायु से वो नदी पर अपना हाथ हिलाएगा और उसे सात धाराओं में बांट देगा और मनुष्यों को सूखे पांव होकर पार जाने देगा, और उसके लोगों के बचे हुए जो अश्शूर से शेष रहेंगे उनके लिए एक राजमार्ग होगा, जैसा इसराइल के लिए उस दिन था जब वो मिस्र देश से निकलकर आया था। यशाया 11:1-16।
पहला पद कहता है, और यिशै के ठूंठ से एक अंकुर निकलेगा और उसकी जड़ों से एक शाखा फूटेगी और उस पर प्रभु की आत्मा ठहरेगी। मसीह का ये प्रभावशाली वर्णन आगे भी चलता है, परंतु ये वर्णन यशाया के दिनों की तुलना में, यहां तक कि उन दिनों की तुलना में भी जब मसीह मनुष्यों के बीच चलते फिरते थे, अंतिम दिनों पर अधिक लागू होता है। ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि पहले से 9वें पद तक सभी मसीह के पहचानने योग्य लक्षण बताए गए हैं और 10वें पद में कहा गया है, और एक डाली निकल आएगी। पहले पद से लेकर 10वें पद तक विचार की धारा में कहीं भी विराम नहीं आता। 10वां पद कहता है, और उस दिन जो पहले पद में जिस दिन की बात है उसी दिन में घटित होना चाहिए। 10वां और पहला दोनों पद जड़ की पहचान कराते हैं, और ऐसा करते ही इन दोनों पदों को पंक्ति पर पंक्ति एक साथ जोड़ देते हैं। मिलाकर पद 1 और 10 कहते हैं, और यशय के ठूंठ से एक अंकुर निकलेगा और उसकी जड़ों से एक शाखा फूटेगी, और उस दिन यिशै की जड़ होगी जो लोगों के लिए ध्वज के समान खड़ी होगी, उसकी ओर अन्य जातियां आएंगी और उसका विश्राम महिमामय होगा। छड़ी सत्ता का प्रतीक है,
और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से सब जातियों पर शासन करने वाला था, और उसका पुत्र परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन तक उठा लिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:5।
एक छड़ी चयन विभाजन और अलगाव का प्रतीक है,
और मूसा ने गवाही के तंबू में प्रभु के सामने छड़ियां रख दीं, और ऐसा हुआ कि अगले दिन मूसा गवाही के तंबू में गया और देखो, लेवी के घराने के लिए हारून की छड़ी में कोंपलें फूट पड़ी थीं, कलियां आईं, फूल खिले और बादाम लगे, और मूसा ने सब छड़ियां प्रभु के सामने से निकालकर सारे इसराइलियों के पास ले आया, और उन्होंने देखा और हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी छड़ी ले ली, और प्रभु ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को फिर से गवाही के सामने रख दे ताकि वो विद्रोहियों के विरुद्ध एक चिन्ह के रूप में रखी जाए, और तू उनकी बड़बड़ाहट को मुझसे पूरी तरह दूर कर देगा ताकि वे न मरे। और मूसा ने ऐसा ही किया जैसा प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी, उसने वैसा ही किया। गिनती 17:7-10।
जिस हारून की छड़ी में कलियां फूटी वो अंतिम वर्षा के काल में एक छड़ी की पहचान बताती है, क्योंकि 13 छड़ियों में से केवल हारून की छड़ी ही कलियां फूटने वाली थी। कलियों का फूटना उस अंतिम वर्षा के काल का प्रतीक है जब परमेश्वर अंतिम वर्षा का संदेश होने का दावा करने वाली 12 विद्रोही छड़ियों और सच्ची छड़ी के बीच भेद प्रकट करेगा, और जैसा एलिया के आग के द्वारा किए गए प्रदर्शन में भी दिखाया गया जिसने सत्य और असत्य के बीच भेद चिन्हित किया। छड़ी माप और न्याय का भी एक प्रतीक है।
और मुझे एक सरकंडा दिया गया जो डंडे के समान था, और स्वर्गदूत खड़ा हुआ और कहा, उठ और परमेश्वर के मंदिर और वेदी को और जो उसमें उपासना करते हैं उन्हें नाप। प्रकाशित वाक्य 11:1।
जैसी के तने से छड़ी निकलती है और जैसी का अर्थ उभर कर दिखाई देना है, ठीक वैसे ही जैसे बाइबिल की भविष्यद्वाणी में मार्ग चिन्ह उभर कर दिखाई देते हैं। फारेज वास्तव में जैसी की जड़ था, और फारेज का अर्थ एक दरार, फूट पड़ना या बिखेर देना है। फारेज जैसी की वंश रेखा की जड़ या शुरुआत है। अतः जैसी की जड़ अल्फा अर्थात फारेज और ओमेगा अर्थात जैसी आरंभ और अंत का प्रतीक है। जैसी की जड़ बिख्याव फारेज से शुरू होती है और एक खड़े हुए मनुष्य के मार्ग चिन्ह पर समाप्त होती है। भविष्य सूचक रूप से पुरुषों का खड़ा होना एक राज्य को चिन्हित करता है। बाइबिल में फारेज एक वंश रेखा की शुरुआत करता है। उसके परिचय से पहले कोई कड़ी नहीं है और उसके नाम का अर्थ टूटन है, इसलिए उसकी वंशावली का लेखा और उसका नाम दोनों फारेज को आरंभ के रूप में पहचानते हैं और जैसी को अंत ठहराते हैं। मेल्कीसेदेक भी एक बाइबिल पात्र है जिसे बिना किसी पूर्व वाशावली के पहचाना गया है, जैसा कि फारेस के मामले में है। फारेस की जड़ में ये सत्य निहित है कि वो मेल्कीसेदेक की याजकाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें अब्राहम ने दशमांश दिया था। मेल्कीसेदेक का क्रम मसीह का याजकीय क्रम है,
जहां हमारे लिए अग्रदूत अर्थात यीशु प्रवेश कर चुका है, जो मेल्कीसेदेक की रीति पर सदैव के लिए महायाजक ठहराया गया है। इब्रानियों 6:20।
जेसी की जड़ मेल्कीसेदेक का याजकत्व था और शुरुआत को अंत का प्रतिबिंब होना चाहिए। जेसी मेल्कीसेदेक के याजकत्व के उठ खड़े होने वाले अंतिम समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जो यशाया के अनुसार राष्ट्रों के लिए एक ध्वज है। स्टेम का अर्थ है पेड़ों को काट गिराना, पेड़ का तना या ठूंठ, चाहे काटा गया हो या लगाया गया हो। और ये स्टेम ऐसे राज्य से उगता है जिसे दानियल अध्याय 4 में नबूकदनेस्सर की भांति एक और कर दिया गया था। भविष्यवाणी की दृष्टि से पेड़ एक राज्य होता है, और जब कोई राज्य समाप्त होता है तब वो पेड़ काट दिया जाता है। पाठ में जो स्टेम है वो ठूंठ से निकलता है, ऊपरी शाखा से नहीं, ठूंठ द्वारा दर्शाए गए एक पूर्ववर्ती राज्य से। एक रॉड अधिकार का प्रतीक प्रकट होती है, और वो अधिकार इस पर आधारित है कि क्या वो रॉड देर की वर्षा के संदेश की कलियां और पुष्प धारण करती है। वो अधिकार एक ऐसे पूर्व राज्य से प्राप्त है जिसे काट दिया गया था। जड़ जेसी की जड़ है, और ठूंठ से निकलने वाला तना उस ठूंठ से आता है जिसकी जड़ें जेसी की जड़ ही है। जो अधिकार उत्पन्न करता है वो तना ठूंठ से आता है, पर शाखा जड़ से आती है, और जड़ ही ध्वज है। जड़ आरंभ है और अंत शाखा है। शब्द ब्रांच का अर्थ फिर्रेदार या मार्ग चिन्ह होता है। यह शाया हमें बताता है कि ब्रांच रविवार के कानून के समय आता है,
और उस दिन 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ लेंगी, ये कहती हुई, हम अपना ही भोजन खाएंगी और अपने ही वस्त्र पहनेंगी, केवल हमें तेरे नाम से पुकारा जाए ताकि हमारा कलंक दूर हो। उस दिन यहोवा की शाखा सुंदर और गौरवमय होगी, और पृथ्वी का फल इज़राइल के बच निकले हुए लोगों के लिए उत्तम और रमणीय होगा। और ऐसा होगा कि जो सियोन में बचा रह जाएगा और जो यरूशलेम में ठहरा रहेगा वो पवित्र कहलाएगा, अर्थात यरूशलेम में जीवितों में जिनका नाम लिखा है वे सब। जब प्रभु सियोन की पुत्रियों की अशुद्धता धो देगा और न्याय की आत्मा और दहन की आत्मा से यरूशलेम के रक्त को उसके मध्य से शुद्ध कर देगा। यशाया 4:1-4।
वो एक पुरुष जिसे 7 स्त्रियां पकड़ती हैं पोप है, जो रविवार के कानून के समय 7 में से 8वां हो जाता है और जहाज में रहे 8 जनों की नकल करता है। रविवार के कानून के समय उस दिन प्रभु की शाखा सुंदर और महिमामयी होगी, जब प्रभु सियोन की पुत्रियों की अशुद्धता धो डालेगा और न्याय की आत्मा तथा दहकने की आत्मा से यरूशलेम के बीच से रक्त को शुद्ध कर देगा। न्याय और दहकने की आत्मा से किया जाने वाला ये शोधन रविवार के कानून के समय मलाकी 3 में वाचा के दूत द्वारा पूरा किया जाता है। सुंदर शाखा वे 144,000 हैं जो ठूंठ से नहीं बल्कि यिशै की जड़ से आते हैं, जो निशान है।
उनका अधिकार उस राजदंड द्वारा प्रदर्शित होता है जो एक पतित राज्य की शाखा से आया था। फिलाडेल्फिया का राज्य 1856 से 1863 तक पतित हो गया, और उस पतित राज्य में स्थापित अधिकार रविवार के कानून के समय फिर से स्थापित होता है। जब वो शाखा जो ध्वज है ऊंचा उठाई जाती है, तब 144,000 का लौदीकिया आंदोलन 144,000 के फिलाडेल्फिया आंदोलन में रूपांतरित हो जाता है। तब वही अधिकार या राजदंड जो मिलरीवादी या फिलाडेल्फिया के राज्य से आया था, यशाया 22:22 में एलिया की मार पर रखी गई एक कुंजी द्वारा दर्शाया जाता है,
और दाऊद के घर की कुंजी मैं उसके कंधे पर रखूंगा, तब वो खोलेगा और कोई बंद नहीं करेगा, और वो बंद करेगा और कोई खोलेगा नहीं। यशाया 22:22।
ये पद 22 अक्टूबर 1844 को दर्शाता है और एलियाकीम को एक कुंजी प्राप्त करने वाले के रूप में पहचानता है। पिछले 2 पदों में लौदीकिया पर अधिकार शेबना से लेकर एलियाकीम को दे दिया जाता है। संडे लॉ के समय चुने हुए वाचा के लोगों को कभी दिया गया वो अधिकार लाओदिकियन सेवेंथ डे एडवेंटिज्म के राज्य से लेकर 144,000 के फिलाडेल्फियन आंदोलन के राज्य को दे दिया जाता है, जो महिमा का राज्य है।
उसने उनसे कहा, परंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तब शमोन पत्रस ने उत्तर देकर कहा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, धन्य है तू शमोन योना का पुत्र, क्योंकि ये बात तुझ पर शरीर और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और पाताल के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। मत्ती 16:16-19।
अधिकार का दंड जिसका प्रतिनिधित्व पतरस को दी गई कुंजी करती है। यशाया 22:23-22 में एलियाकीम के कंधे पर रखा जाता है। पतरस 144,000 की उस शाखा का प्रतिनिधित्व करता है जो रविवार के कानून से ठीक पूर्व मसीह के साथ वाचा में प्रवेश करती है। उस अंश में पतरस कैसरिया फिलिप्पी में है, जो दानियल 11 के पद 13 से 15 के पानियम के अनुरूप है। उसका नाम परिवर्तित किया जाता है, जो वाचा संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, और पीटर नाम जब प्रत्येक अक्षर के वर्णक्रमानुसार क्रमांक को परस्पर गुणा करके देखा जाता है तो 144,000 के समतुल्य होता है। वह अधिकार या दंड या कुंजी जो शिबना को गेंद के समान किसी मैदान में फेंक दिए जाने पर एलियाकीम के कंधे पर रखा जाता है, वही दंड है जो फिलाडेल्फियाई मिलराइट एडवेंटिज्म के उस ठूट से निकलता है जिसे 1856 से 1863 तक काट दिया गया था। पतरस गेहूं और खरपतवार के अलगाव के समय परमेश्वर की वाचा के लोगों का अधिकार प्राप्त कर रहा है, क्योंकि गेहूं को पेंटिकोस्ट की हिलाई रोटियों की भेंट के रूप में ऊंचा उठाया जाना है। सबसे पहले खरपतवार अलग किए जाते हैं। ये उस तथ्य से दर्शाया गया है कि पेंटिकोस्ट की हिलाई रोटियों में जो खमीर है वो पकाने की प्रक्रिया के दौरान हटा दिया जाता है। राजदंड या कुंजी का अधिकार गिरे हुए राज्य के सप्तेड़ से आता है, और जो ध्वज स्वरूप शाखा है वो यशाय की जड़ से आती है, और वही यशाय की जड़ है, क्योंकि यीशु किसी बात का अंत उसकी शुरुआत से चित्रित करते हैं। जड़ शुरुआत है और शाखा अंत। ये भविष्यद्वाणिक अनुप्रयोग मसीह के समय के या आज के कुतर्क करने वाले यहूदियों द्वारा समझा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अंतिम वर्षा की पद्धति का मूल सिद्धांत है, और इसे दाऊद के घराने की कुंजी के रूप में भी दिखाया गया है। ये कुंजी दाऊद के घराने के उस द्वार को खोलती है जो बंद रहा है। ये कुंजी स्वर्गीय पवित्र स्थान दाऊद के घराने का द्वार खोलती है 22 अक्टूबर 1844 का अल्फा रविवार के कानून के ओमेगा में दोहराया जाता है। जेसी के पुत्र दाऊद एक ऐसी पहेली दर्ज करता है जिसने मसीह के दिनों में कुतर्की यहूदियों के साथ किसी भी आगे की चर्चा पर विराम लगा दिया, और इस प्रकार यहूदियों के प्रति उनकी गवाही का भी अंत कर दिया।
दाऊद का भजन। यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। यहोवा सियोन से तेरी शक्ति का राजदंड भेजेगा, तू अपने शत्रुओं के बीच राज्य कर। तेरे लोग तेरी शक्ति के दिन पवित्रता की शोभा में स्वेच्छा से प्रस्तुत होंगे। भोर की कोख से तेरी युवावस्था की ओस तुझ पर है। यहोवा ने शपथ खाई है और वो पछताएगा नहीं। तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सदा का याजक है। भजन संहिता 110:1-4।
बालमोनी ने ये ठहराया कि ये अंश भजन संहिता 110 में रखा जाए, जो निस्संदेह गणित की दुनिया में एक और ऐसी संख्या है जिसे विशेष माना जाता है। 110 का आधा और 11 का 10 गुना होने के कारण कोई आत्मा ये अपेक्षा कर सकती है कि 110 संख्या का कोई महत्व होगा, और वास्तव में ऐसा ही है, जैसे स्वयं ये अंश भी है। ये दाऊद का एक गीत है, और दाऊद 144,000 का प्रतीक है, अतः ये दाख की बारी के गीत का एक पद है, जो मूसा और मेमने का गीत है। ये बताता है कि कब दाख की बारी के पूर्व बागबान एक ओर कर दिए जाते हैं और दाख की बारी 144,000 को सौंप दी जाती है। जब ऐसा होता है तब वो तेरी सामर्थ्य का दिन होता है, जो पेंटिकोस्ट की सामर्थ्य के साथ मेल खाता है। पेंटिकोस्ट काल के चरमोत्कर्ष पर परमेश्वर की प्रजा उस दिन इच्छुक होगी जब वे भोर के गर्भ से तेरी युवावस्था की ओस के साथ निकलेंगे। नया जन्म परिवर्तन और जीवन का एक चित्रण है। 144,000 जुलाई 2023 में गर्भ से निकाले गए और वे अपनी युवावस्था की ओस के साथ जन्मे थे, क्योंकि वे मिडनाइट क्राई के संदेश में जन्मे थे, जी प्रारंभ में मिल राइट्स के साथ भी घटित हुआ था, अर्थात उनकी युवावस्था में। वही ओस है, क्योंकि ये ओमेगा के इतिहास के भीतर अल्फा के इतिहास की पुनरावृत्ति है। उनके सशक्तिकरण के दिन में जब शेबना को उसके पद से और उसकी अवस्था से निकाल दिया जाता है और एलियाकीम को नीचे खींच लिया जाता है, तो 144,000 को ओमेगा याजक बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें मलकीसेदेक की रीति के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि 144,000 मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, अर्थात मलकीसेदेक की भांति वे सदा के लिए याजक हैं। उसकी सामर्थ के दिन में प्रभु उसकी सामर्थ का राजदंड सियोन में से भेजेगा। उसके राज्यों अनुग्रह धर्मी ठहराया जाना और महिमा पवित्रीकरण का अधिकार उन पर सौंपा गया है जो उसकी महिमा का मुकुट धारण करते हैं, क्योंकि वे उसके राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सियोन से भेजे जाते हैं, क्योंकि सियोन का अर्थ 144,000 के ध्वज चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है।
जब फरीसी इकट्ठे हुए थे तब यीशु ने उनसे पूछकर कहा, तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का पुत्र। वो उनसे कहता है,
तो फिर दाऊद आत्मा में उसे प्रभु कैसे कहता है? ये कहते हुए प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी न बना दूं। यदि दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे है?
और कोई भी व्यक्ति उसे एक भी बात का उत्तर ना दे सका, और उस दिन के बाद किसी ने उससे फिर कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। मत्ती 24:43-43।
अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत के संदर्भ में दाऊद का मसीह से भविष्यवाणी का संबंध रेखा पर रेखा पद्धति का मुख्य नियम है, और जिस प्रकार कुतर्की यहूदी उस नियम को नहीं समझ सके, उसी प्रकार एक लाओदीकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट भी ये नहीं समझ सकता कि मिडनाइट क्राई के संदेश के समय मिलराइट्स का इतिहास वही स्थान था जहां एडवेंटिज्म की युवावस्था में स्वर्ग की ओस उंडेली गई थी। तेरी युवावस्था की ओस 144,000 पर है, और इसका छिड़काव 9 बजे को आरंभ हुआ, और संडे लॉ शक्ति का दिन है जब शेष जन मेलकीसेदेक की व्यवस्था के अनुसार याजकों के रूप में अभिषिक्त किए जाते हैं। लाओदीकियाई सेवन डे एडवेंटिज्म के ठूंठ युद्धरत कलीसिया से शाखा विजयी कलीसिया निकलती है, जबकि जैसी की जड़ से 144,000 उसकी शक्ति के दिन लहराकर भेंट के रूप में उठाई गई महिमामय फल की शाखा है। हम इन विचारों को अगले लेख में आगे बढ़ाएंगे।
नीति वचन 1। 1 अप्रैल 1825, छोटे झुंड के नाम। प्रिय भाइयों, प्रभु ने 26 जनवरी को मुझे एक दर्शन दिया जिसका मैं वर्णन करूंगा। मैंने देखा कि परमेश्वर के कुछ लोग मूड और सुप्त थे। वे केवल आधे ही जागे थे और उन्हें ये भान नहीं था कि हम अभी किस समय में जी रहे हैं, और कि धूल झाड़ू वाला मनुष्य प्रवेश कर चुका था और कुछ लोग झाड़कर बहा दिए जाने के खतरे में थे। मैंने यीशु से विनती की कि वो उन्हें बचाए, उन्हें थोड़ा और अवकाश दे और उन्हें उनके भयावह संकट का एहसास कराए, ताकि हमेशा के लिए बहुत देर हो जाने से पहले वे तैयार हो सकें। स्वर्गदूत ने कहा, विनाश प्रचंड बवंडर की तरह आ रहा है। मैंने स्वर्गदूत से विनती की कि वो उन पर दया करे और उन्हें बचाए जो इस संसार से प्रेम करते थे, अपनी संपत्तियों से आसक्त थे और उनसे कटकर अलग होने तथा उन्हें बलिदान करने को तैयार नहीं थे, ताकि दूतों को उनकी यात्रा में शीघ्रता मिले, जिससे वे भूखी भेड़ों को जो आत्मिक भोजन के अभाव में नाश हो रही थी, खिला सकें। जब मैंने देखा कि वर्तमान सत्य के अभाव में अभागी आत्माएं मर रही थीं और कुछ जो सत्य में विश्वास करने का दावा करते थे परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक साधनों को रोक रखकर उन्हें मरने दे रहे थे, तो वो दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था और मैंने स्वर्गदूत से विनती की कि वो इसे मुझसे दूर कर दे। मैंने देखा कि जब परमेश्वर के कार्य हेतु उनकी कुछ संपत्ति मांगी जाती तो वे उस युवा व्यक्ति की तरह जो यीशु के पास आया था, मैथ्यू 19:60-22, उदास होकर चले जाते, और ये भी कि शीघ्र ही उमड़ती हुई विपत्ति गुजरेगी और उनकी सारी संपत्ति को बहा ले जाएगी और तब सांसारिक वस्तुओं का बलिदान देकर स्वर्ग में खजाना संचय करना बहुत देर हो जाएगा। तब मैंने उस महिमा में उद्धारकर्ता को देखा, सुंदर और मनोहर, जो महिमा के लोगों को छोड़कर इस अंधेरी और निर्जन दुनिया में आया अपना अनमोल जीवन देने और मरने के लिए, धर्मी ने अधर्मियों के लिए। उसने क्रूर उपहास और कोड़ों की मार सहली, गुंथे हुए कांटों का मुकुट पहना और बगीचे में रक्त की बड़ी बड़ी बूंदों के समान पसीना बहाया, जबकि समस्त संसार के पापों का भार उस पर था। स्वर्गदूत ने पूछा, किस लिए? ओह, मैंने देखा और जान लिया कि ये हमारे लिए था। हमारे पापों के कारण उसने ये सब सहा, ताकि अपने अनमोल रक्त के द्वारा वो हमें परमेश्वर के पास छुड़ा ले। मुझे फिर से वे लोग दिखाए गए जो नाश हो रही आत्माओं को बचाने के लिए उन्हें सत्य पहुंचाकर इस संसार की धन संपत्ति को दान करने को तैयार नहीं थे, जबकि यीशु पिता के सामने खड़े होकर उनके लिए अपने लहू, अपनी पीड़ाओं और अपनी मृत्यु के आधार पर विनती कर रहे हैं, और जबकि परमेश्वर के दूत प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें ये उद्धारकारी सत्य पहुंचाने के लिए तत्पर, ताकि वे जीवित परमेश्वर की मुहर से मुहरबंद किए जाएं। कुछ लोगों के लिए जो वर्तमान सत्य पर विश्वास करने का दावा करते थे, दूतों को परमेश्वर का अपना धन दे देना भी कठिन था जो उसने उन्हें भंडारी बनाकर उधार दिया था। तब दुख सहने वाले यीशु, उनका बलिदान और इतना गहरा प्रेम कि उन्होंने उनके लिए अपना जीवन दे दिया, मुझे फिर से दिखाया गया। और फिर मुझे उन लोगों का जीवन भी दिखाया गया जो अपने को उसके अनुयायी होने का दावा करते थे, जिनके पास इस संसार की धन संपत्ति थी और जो उद्धार के कार्यों में सहायता करना बहुत बड़ा काम समझते थे। स्वर्गदूत ने कहा, क्या ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? दूसरे स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य में रुचि नहीं रखते वे स्वर्ग में उद्धार के प्रेम का गीत कभी नहीं गा सकते। मैंने देखा कि पृथ्वी पर परमेश्वर का जो त्वरित कार्य चल रहा था उसे धार्मिकता में शीघ्र ही संक्षिप्त कर दिया जाएगा और शीघ्रगामी दूतों को बिखरी हुई भेड़ों को खोज निकालने के लिए अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ा चाहिए। एक स्वर्गदूत ने कहा, क्या सब दूत है? नहीं नहीं, परमेश्वर के दूतों के पास एक संदेश होता है। मैंने देखा कि परमेश्वर के कार्य को उन कुछ यात्रियों ने, जिनके पास परमेश्वर का कोई संदेश नहीं था, बाधित किया और उसका अपमान किया। ऐसे लोगों को परमेश्वर के सामने उस हर डॉलर का हिसाब देना होगा जो उन्होंने वहां यात्रा में खर्च किया, जहां जाना उनका कर्तव्य नहीं था, क्योंकि वो धन परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में काम आ सकता था और उसकी कमी के कारण आत्माएं आध्यात्मिक भोजन के अभाव में भूखी रहीं और मर गईं, जो उन्हें परमेश्वर के बुलाए और चुने हुए दूतों द्वारा दिया जा सकता था यदि उनके पास साधन होते। प्रचंड हिलाहट आरंभ हो चुकी है और ये जारी रहेगी, और जो सत्य के लिए दृढ़ और अडिग होकर खड़े होने तथा परमेश्वर और उसके उद्देश्य के लिए बलिदान देने को तैयार नहीं हैं, वे सब झाड़कर अलग कर दिए जाएंगे। स्वर्गदूत ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि किसी को बलिदान करने के लिए बाध्य किया जाएगा? नहीं नहीं, ये स्वेच्छा की भेंट होनी चाहिए। खेत खरीदने में सब कुछ लग जाएगा। मैंने परमेश्वर से पुकार कर विनती की कि वो अपने लोगों को बख्श दे। उनमें से कुछ मूर्छित हो रहे थे और मर रहे थे। मैंने देखा कि जिनमें अपने हाथों से श्रम करने और उस ध्येय को सहारा देने की शक्ति थी, वे उस शक्ति के लिए उतने ही उत्तरदायी थे जितने अन्य लोग अपनी संपत्ति के लिए थे। तब मैंने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय शीघ्र आ रहे थे। मैंने स्वर्गदूत से विनती की कि वो अपनी भाषा में लोगों से बोले। उसने कहा, जो लोग परमेश्वर के वचन के सरल सत्यों से नहीं हिलेंगे, माउंट साइनाई की सारी गर्जें और बिजलियां भी उन्हें नहीं हिला पाएंगी, न ही किसी स्वर्गदूत का संदेश उन्हें जगा पाएगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, अप्रैल 1, 1850।